ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी जी का हम स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। 1969 में आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। साउथ गुजरात मैट्रिक बोर्ड में प्रथम स्थान पर आने का गौरव प्राप्त हुआ है, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं ने आपको इतना प्रभावित किया कि 1972 में बोर्ड परीक्षा पास करने के पश्चात आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। शुरुआत में गुजरात के विभिन्न स्थानों पर जैसे सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर रहकर सेवाएं दी। उसके बाद लगातार 14 वर्ष आप भावनगर के सब जोन इंचार्ज के रूप में अमूल्य सेवाएं देते रहे। 1993 में जब ज्ञान सरोवर एकेडमी का नवनिर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको बुलाया और 17 वर्ष वहां रहकर आपने रिसेप्शन, एकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सुचारू रूप से चलाया। फिर वर्ष 2010-11 के आसपास जब शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया, बाबा ने आपको वहां बिठाया तो वर्तमान में शांतिवन परिसर में रहते हुए आप हेडक्वार्टर के सभी परिसर में सेवाएं देते हैं। मुख्य रूप से आप कुशल राजयोग एवं स्वप्रबंधक प्रशिक्षिका है, भट्टी की प्रशिक्षिका है और ब्रह्म कुमार टीचर्स बहनों के प्रशिक्षण प्रोग्राम के भी प्रभावी प्रशिक्षिका है। मुख्यालय में राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत विभिन्न विंग्स के जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें भी आप अनेक विषयों पर व्याख्यान देते हैं। साथ साथ आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप भारत देश और विदेश भी भ्रमण करके आए हैं। आए दिन पूरे भारतवर्ष से आपको निमंत्रण मिलते रहते हैं, कहाँ शिविर कराने, कहाँ भटिया कराने और कहाँ बिजनेस और इंडस्ट्री विंग्स के प्रोग्राम कराने भी आप जाते हैं। आपके द्वारा लिखे गए लेख अखबारों पत्रिकाओं में भी छपते रहते हैं। साथ साथ पीस ऑफ माइंड चैनल, आस्था संस्कार चैनल पर आपके प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। तो आज का विषय है स्वमानदारी संबंधदारी। आज बाबा ने कहा इन दोनों के बीच में बहुत गहरा संबंध है, तो इसी पर दीदी जी प्रकाश डालेंगे। तो सुनते हैं आदरणीय गीता दीदी जी से।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देश के एक छोर से दूसरे छोर पर आप सभी आए हैं। मधुबन की पावन भूमि में तपस्या के लिए आए हैं। इतना दूर से आने वाले आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि इतने दूर से समय निकाल करके बाबा की इस पावन भूमि, तपोभूमि, वरदान भूमि में आप पधारे। सबको अच्छा लग रहा है? हाँ, क्योंकि राई बगान का शायद पहली बार ही ग्रुप हम सुन रहे हैं। हाँ, बिंदु बहन को तो जानते हैं, बहुत पुरानी बहन है। शुरू में जब मेला हुआ था हम आए थे, उनके अंदर विशेष कलाएं हैं, वो देखी थी मेले के डेकोरेशन में। जो पहली बार मधुबन में रहने आए हैं वो हाथ ऊपर कर। मधुबन, ये मधुबन है ना अपना, जो फर्स्ट टाइम यहाँ रहेंगे, यही पांडव भवन मधुबन ही तो इसको कहते हैं। नहीं पता है, हैं? यही तो मधुबन है। मधुबन में मुरली बाजे, ये इसी मधुबन का गायन है ना, यहीं बाबा थे। बहुत अच्छा। योग लग रहा है सबका बाबा से। हाँ? मधुबन में हम नेचुरल योगी बन सकते हैं, यहां हमें मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि बाबा की ये कर्म भूमि है, तपोभूमि है, मम्मा की दादियों की भी ये कर्म भूमि है, इसलिए इसके कण कण में बाबा की याद समाई हुई है। सबने देखा मधुबन पूरा, देखा कि नहीं देखा? हाँ, कहाँ बाबा रहते थे, कहाँ मम्मा रहती थी, कहाँ दीदी रहती थी, कहाँ दादी रहती थी, सब देखा सभी ने? हाँ, देखो अच्छी तरह से। हमारी तपस्या के मुख्य दो अभ्यास है, एक तो बाबा हमें कहते हैं आत्मभिमानी बनो, जितना आत्मभिमानी बनेंगे स्वधर्म में स्वरूप में स्थित होंगे उतना योग बाबा से भी लगेगा। जब से बाबा ने हमें अपना बनाया, हमारे स्वमान को ऊंचा उठाए, ड्रामा को जानते हैं, युगों का इतिहास जानते हैं कि द्वापर युग से सबसे पहला कार्य यही किया गया, हमारे स्वमान को तोड़ दिया गया। ब्राह्मणों, पंडितों, पुजारियों ने, सन्यासियों ने यही कार्य किया, सबके स्वमान को खत्म कर दिया। तुम गृहस्थी हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम तो हमारी चरण में आओ, शरण में आओ, हम तुम्हें पार करेंगे। तो गृहस्थियों ने भी बार बार जब बात कही जाएगी तो स्वीकार कर ली कि भाई हम गृहस्थी हैं, हम योगी तपस्वी नहीं बन सकते, क्योंकि वो ऐसे ही कहते रहे कि जन्मों का तप हो तो आप संत तपस्वी बनेंगे, जबकि बाबा ने तो हमें सत्य बता दिया कि कलयुग के अंत बिल्कुल पति तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आकर तुम्हें योगी बनाता। तो बुद्धि में दो चीज आ गई कि हम संसारी हैं, वो सन्यासी। योगी बनना है तो सब कुछ छोड़ना पड़े, इसलिए लक्ष्य ही नहीं बनाया कि हम योगी तपस्वी बन सकते। भाई पूजा करो, चढ़ावा चढ़ाओ, गुरु जी को नमन करो, ये ही हमारे लिए पार्ट बना दिया गया। और माताओं और बहनों को तो बिल्कुल गिरा दिया है ना, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी। नारी नरक का द्वार है, नारी सर्पिणी है, पता नहीं क्या क्या गिरे हुए शब्द बोले। तो बहनों के स्वमान को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। समाज पुरुष प्रधान बन गया, स्त्रियों को चार दीवारों में बंद कर दिया। आज भल जब से बाबा ने बहनों को आगे किया, दुनिया में भी महिलाओं के उत्थान के प्रोग्राम होने लगे। लेकिन अभी भी अहंकार और क्रोध इतना है कि कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितने ऊंचे पोस्ट पोजीशन पर हो, फिर भी इतना सम्मान नहीं दे पाते, ईगो क्लैश होता है। इसलिए बाबा ने आकर सबसे पहले हमारे स्वमान को ऊंचा उठाया। तुम ईश्वर की संतान हो, ये कितना बड़ा स्वमान है। हम भगवान के बच्चे हैं, ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। ये कितने स्वमान की बात है। बाबा ने माताओं बहनों पर कलश रखा ज्ञान का, तुम्हारे द्वारा बाबा स्वर्ग के द्वार खोलते, कितनी बड़ी बात। और रोज की मुरली में देखिए बाबा कितने ऊंचे टाइटल देते हैं, कितने ऊंचे स्वमान देते हैं, कितनी ऊंची नजर से हमें देखते हैं। तुम ड्रामा के हीरो एक्टर्स, तुम गॉडली स्टूडेंट, तुम खुदाई खिदमतगार हो, कितने टाइटल बाबा ने दिए। स्वमान की तो माला बनी हुई है, पता है ना सबको, पूरी लिस्ट बनी हुई है। आप अव्यक्त वाणियां पढ़ो, हर मुरली में कितने टाइटल स्वमान बाबा ने दिए। इसलिए अब हम साधारण मानव नहीं हैं। भल हमारा नाम रूप साधारण है, लेकिन हम आत्माएं असाधारण अलौकिक है। स्वयं भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, ब्रह्मा मुख से हमें अलौकिक ब्राह्मण जन्म दिया है। ये कितने सौभाग्य की बात है कि स्वयं परम पिता ने, आदि पिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें नया ब्राह्मण जन्म दिया। सबको खुशी है, हाँ? याद रहता है ना, रोज रोज मुरली में नए नए टाइटल बाबा देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी हो, त्रिनेत्री हो, तुम नॉलेजफुल हो, जो बाबा की महिमा वो सारी महिमा बाबा ने हमें भी दी। इसलिए सदा स्वमान याद रहेगा तो बाबा कहते हैं ना, नशा चढ़ेगा, खुशी होगी। आत्मा में शक्ति आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, उमंग उत्साह आ जाएगा। कल्प पहले वाले तुम ही देवी देवता घराने की आत्माएं हो, तुमने ही विजय पाई थी, तुम्हें ही फिर पानी है, तुम विजयी रत्न हो। कितनी ऊंची नजर से बाबा हमें देखते, आज तक दुनिया में परिवार में कोई किसको ऊंची नजर से देखता रहे, एक दो की ग्लानी ही करते रहते, ईर्ष्या वैर द्वेष ही करते रहे। और ये अंतिम जन्म में जब हम आत्माएं पूरी पति तमो प्रधान बन गए, हमारे में कोई दैवी गुण नहीं रहे, तब बाबा ने हमें कहा तुम ही देवता थे, तुम्हें ही बनना है। जब कोई दैवी गुण नहीं थे तब बाबा ने हमें इस नजर से देखा कि तुम ही देवता थे, तुमको ही बनना है। तुम बाबा के साथी हो, मददगार हो। जब कोई ऊंचे टाइटल से, ऊंचे स्वमान से हमें बार बार एड्रेस करेगा, संबोधन करेगा, तो व्यक्ति को अपने आप में भी महसूस होता है कि जब सब इतनी ऊंची नजर से देखते हैं तो मैं कितनी महान आत्मा। हम खुद भी खुद को ऊंची स्थिति में स्थित कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम गृहस्थी नहीं हो, तुम ट्रस्टी हो, तुम राज ऋषि हो, राजयोगी हो, तपस्वी हो, बेहद के वैरागी हो। कहां देह में फंसे थे, देहधारियों में फंसे थे, इंद्रिय रसों में डूबे थे, वहां से बाबा ने हमें निकाला। रोज श्रेष्ठ विचार और शुभ भावना देकर, कितना बड़ा बाबा साइकोलॉजिस्ट है। तो आत्मा में खुशी होती है, उमंग आता है। जब हमारे में कोई उम्मीद रखते हैं तो खुद को भी करने का उमंग आ जाता है। जब स्वमान में स्थित नहीं है तब व्यर्थ विचार आते हैं, ये समझ जाओ। जब स्वमान में स्थित रहेंगे अपने आप श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे। अगर बुद्धि साधारण बातों के चिंतन में लगी रहती है, रूटीन बातें जो हमारे रोज के कामकाज की बातें, कपड़े धोने हैं, सब्जी काटनी है, रोटी बनानी है, बाजार जाना है, ये करना है, नौकरी, इट इज कॉमन, ये हमारा रूटीन है। पर वही उठने बैठने, नहाने धोने, सोने खाने पीने, वही विचार अगर आते रहते हैं तो ये साधारण विचार चलने का यही कारण है कि हम स्वमान में स्थित नहीं। इसलिए रोज की मुरली से स्वमान निकालो। लिखो आज कौन से टाइटल बाबा ने हमें दी। अब तो सबके पास मुरली है ना, सबके पास मोबाइल में आती है ना सबको। हम लोगों के जमाने में तो सबको मुरली मिलती ही नहीं थी, सेंटर में दो चार कॉपी आती थी बस। रोज के रोज तो पढ़ने को मिलेगी ही नहीं। अब तो ड्रामा अनुसार विज्ञान ने मदद की है, सबके पास मोबाइल में मुरली। तो ये सुविधा हमें किस लिए मिली है? सिर्फ एक बार मुरली क्लास में जाके सुनी, पूरा हो गया काम? हाँ नहीं, हमें खुद रोज मुरली पढ़नी है, रोज क्लास में जाकर सुननी है, रोज मुख्य पॉइंट्स लिखने हैं। वे आज की मुरली में कौन से टाइटल दी, कौन से अभ्यास की बात बाबा ने कही, कौन सी धारणाओं पर बाबा ने अंडरलाइन कराया, तो ये अलग से पॉइंट नोट करो। हमें मुरली का अध्ययन करना है, स्टडी करनी है। तो सुनना, पढ़ना, लिखना, मुख्य पॉइंट्स लिखना, आपस में रिवाइज करना, खुद रिवाइज करना, अभ्यास में लाना, तब कहेंगे हम मुरली का स्टडी कर रहे। ये कथा नहीं है सुन लिया काम पूरा हो गया। मुरली ही हमारा मुख्य शस्त्र है, मुख्य शास्त्र है। इसी मुरली से हमें संपूर्ण बनना है। तो जितना मुरली का अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, ज्ञान की गहराई को प्राप्त करेंगे, उतना माया जीत बन सकेंगे। आत्मा को द्वापर युग से साधारण जीवन जीने का अभ्यास है, क्योंकि भक्ति में सत्य ज्ञान नहीं था ना, तो आत्मा में शक्ति नहीं थी, विकारों के वश जीवन जीते रहे। ये तो बाबा ने हमें योगी जीवन दिया। हम सत्य ज्ञानी आत्मा बने, सारे आदि मध्य अंत के राज, आलोक परलोक के राज बाबा ने हमारे आगे खोल दिए। ऐसी कोई बात नहीं है जो बाबा ने हमें ना समझाई। सोचो 33 वर्ष साकार में बाबा ने मुरलियां चलाई, ज्ञान का विस्तार समझाया और प्रैक्टिकल जीवन की हर छोटी मोटी मैनर्स और धारणा बाबा ने हमें सिखाई। खाना कैसे, देखना कैसे, बोलना कैसे, हंसना कैसे, चलना कैसे, प्रैक्टिकल जीवन की हर मैनर्स बाबा ने सिखाई। भल हम साकार बाबा के टाइम नहीं थे, लेकिन वो ही साकार मुरलियां हम सुन रहे हैं ना, जो बाबा ने दादियों को सुनाई थी, वही मुरलियां तो हम सभी सुन रहे हैं, तो वो सारा ज्ञान का खजाना भी हमें मिला है। अव्यक्त बनने के बाद 1969 से 2017 तक लगभग 50 वर्ष अव्यक्त बाप दादा की पालना हम सबको मिली है। आप में से भी मिले होंगे ना अव्यक्त बाप दादा से, कौन कौन मिले हैं? क्यों माताएं नहीं मिली है? काफी भाई बहने मिले। ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति से लगभग 50 वर्ष संपूर्ण बनने का टोटल मार्गदर्शन हमें दिया। वो सारी अव्यक्त मुरलियां अभी भी हम सुन रहे हैं, वो सारा खजाना हमारे लिए। हमारी दादियों ने 50 वर्ष, दादियों ने तो यज्ञ के आरंभ से ही सेवाएं की, लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद 1969 से 2021 तक हमारी दादियों ने हम सबकी पालना की, हम सबकी पालना की। इतने बड़े यज्ञ को संभालना, कोई मासी का घर तो नहीं है ना? हाँ, सिर्फ ज्ञान योग के क्लासेस नहीं कराए, खुद उदाहरण मूर्त बनकर, आदर्श बनकर हम सबकी कितने प्यार से पालना की, इतनी व्यवस्थाएं करना कितनी बड़ी बात। और अभी भी हमारी बड़ी दीदियां दादी अब एक हमारे लिए सैंपल के रूप में है। पता है ना सबको कौन सी दादी है? हाँ, दादी रत्न मोहिनी जी। भगवान ने एक सैंपल हम सबके लिए रखा। हाँ, तो अभी भी हमारी दीदियां दादाएं, बड़े भाई बहने, जो भी निमित्त है हम सबकी पालना करते। ऐसा सौभाग्य जिसको मिला है वो तो सदा कैसे होने चाहिए? स्वमानधारी, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। किसी के कहने से हमारा मूड खराब नहीं होना चाहिए। बाबा रोज इतने टाइटल देते हैं, स्वमान देते हैं, वो नशा नहीं चढ़ता है। और कोई मनुष्य अगर कह दे कि आप तो बिल्कुल बुद्धू है, कुछ आता नहीं है, बेकार है, तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। मनुष्य कहते हैं वो स्वीकार कर लेते, और भगवान कहता है वो स्वीकार नहीं होता है। होना चाहिए ना? क्यों हमें अपमान की फीलिंग आती है? ये क्या समझते हैं मेरे लिए ऐसे ऐसे कैसे बोला? उसने बोला ना, आपने क्यों मान लिया, आपने क्यों स्वीकार कर लिया? तो जब आप स्वमान में स्थित हैं, तो आपको कोई अपमान की फीलिंग नहीं आएगी, किसी के कहने पर अवस्था बिगड़ेगी नहीं। आप समझ जाएंगे कि वो आत्मा का स्वभाव है, उनका संस्कार है ऐसा बोलना। कोई बात नहीं, हमें मन पर नहीं लेना। इसलिए बाबा कहते हैं रोज सुबह सुबह मुरली क्लास करना है और सुबह से ही हमें स्वमान को धारण करना है। तो आपकी चलन कहीं भी साधारण नहीं बनी, कोई देखे न देखे, कहीं भी हम हैं हम अपनी ऊंची स्थिति में होंगे, क्योंकि बाबा ने अपना साथी बनाया है, हमें निमित्त बनाया है नई दुनिया स्थापन करने के लिए, सतधर्म को स्थापन करने के लिए। तो ऐसी निमित आत्मा की अवस्था तो कितनी ऊंची होनी चाहिए। इसलिए साधारण स्थिति नहीं, अवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। बार बार अवस्था बिगड़े, फिर बनाए, फिर बिगड़े, हमारी शक्ति वेस्ट हो जाती। हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं। जब आप स्वमान में स्थित है कि हम भगवान के वारिस है, दाता के बच्चे, हम मास्टर दाता है, हमें आत्माओं से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। हमें तो बाबा का प्रतिनिधि बनकर बाबा के तरफ से हमें सबको देना है। मास्टर दाता है ना, बाबा ने हमें सब कुछ दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है? बाबा कहते हैं ना, प्राप्तियों की लिस्ट लिखो, हाँ, कि बाबा ने हमें क्या नहीं दिया। प्यार दिया, शक्ति दी, हिम्मत दी, उमंग भरा, पवित्र बनाया, सत्य बनाया, निमित्त बनाया, विश्व कल्याणी बनाया, क्या नहीं बनाया बाबा ने। बाबा कहते अगर वो प्राप्ति की लिस्ट याद रहेगी तो सदा खुशी रहे। अपने आप मन की स्थिति ऊंची, विचार भी ऊंचे आएंगे, वाणी भी हमारी संयम वाली होगी, मुख से कटु शब्द अपशब्द नहीं निकलेंगे। जो खुद स्वमान में रहेगा वो दूसरे को भी सम्मान दे सकेगा, जो खुद ही नहीं रहेगा वो दूसरे को कैसे दे। इसलिए स्वमानधारी ही सम्मानदायी बन सकते। रिस्पेक्ट देना है। अब तो पता चल गया ना कि सभी बाबा के बच्चे हैं, कोई पराया नहीं है। हम एक ही बाबा के बच्चे, एक ही परम धाम के निवासी, हमारा एक ही विश्व परिवार है। तो अपना जब समझेंगे तो आप कभी भी किसी का अपमान नहीं करेंगे, डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। और उसमें भी हम भाई बहने जो बाबा के बने हैं, वो तो ब्राह्मण परिवार के अलौकिक परिवार की आत्माएं हैं। और आज का ब्राह्मण कल का क्या है? देवता है। ये वो ही होवनहार देवी देवता है। तो जब खुद को ऊंची नजर से देखेंगे तो दूसरों को भी सदा आप ऊंची नजर से देख। भली संतिम जन्म में आप एक परिवार में हैं, पति पत्नी बच्चे हैं, माँ बाप भाई बहन सब ज्ञान में चलते हैं, हम एक ही परिवार के हैं, लेकिन हमें एक दो को रिगार्ड देना है, ऊंची नजर से देखना कि बाबा ने अभी अपना बनाया ताकि भविष्य में सतयुग में हम ही तो आएंगे। सतयुग में कौन आएंगे? हाँ देखो, कोई खुशी से नहीं बोल रहा है, क्या बात है? स्वमान नहीं है क्या? कितना नशे से कहना चाहिए कि हम ही आएंगे, और कोई थोड़ी आएगा। हाँ, जो संगम युग में ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे वो ही तो सतयुगी देवी देवता बनेंगे। तो नई दुनिया में हम ही आएंगे, बाबा हमारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहा है। क्योंकि जब बाबा स्थापन कर रहे हैं तो बाकी तो पहचानते भी नहीं है, मददगार तो बनने की बात ही नहीं है। जिन्होंने पहचाना वो बाबा के मददगार साथी बन गए। नई दुनिया स्थापन करने में हम सब साथी है, तो जो स्थापना करेगा वो ही तो प्रारब्ध पाएगा ना। जिन्होंने भारत को आजाद करने में फ्रीडम फाइट में मदद की, उन्हीं फ्रीडम फाइटर को आज कितनी सुविधा मिलती, आज भी गवर्नमेंट देती है ना उनको सुविधा। वो तो मनुष्यों की फाइट थी। ये नई दुनिया के स्थापना के कार्य में जो मददगार बनेंगे वही तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे, और कोई थोड़ी बनेगा। तो बाबा कहते हैं ना, कैसी दुनिया में तुम जा रहे हो याद करो, सतयुगी दुनिया की क्या विशेषताएं, उस हिसाब से अपने आप को देखो, हम वहां के योग्य हैं, वहां के योग्य बनते जा रहे हैं, ये खुद खुद को देखना। तो जब ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त है तो हमारे मन वचन कर्म कैसे होने चाहिए? हम ज्ञानी तु आत्माएं, भाई कोई अनपढ़ कुछ गलत कर दे, भूल कर दे, तो लोग उसको माफ कर दें कि भाई चलो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। पर कोई पढ़ा लिखा अगर मिसबिहेव करे तो लोग क्या कहेंगे कि भाई तुम तो पढ़े लिखे हो ना, पढ़े लिखा होकर ऐसा व्यवहार करते हो। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है? हम बाबा के बच्चे हैं ना, स्वयं भगवान जिसको रोज पढ़ाते हैं, सारे आदि मध्यांत का मूल ज्ञान बाबा हमें देते हैं। तो भगवान से पढ़ने वाले स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, उनकी मैनर्स क्या होने चाहिए, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, खुद खुद को रियलाइज कराओ ना। भगवान ने तो पढ़ा दिया, अपना पार्ट बाबा ने पूरा कर दिया। 1936 से 2017 तक बाबा ने हमें कितना पढ़ाए, तो भगवान से पढ़ने वाले हम आत्माएं सबसे ज्यादा बुद्धिमान सेंसिबल होने चाहिए। हमारे में मैनर्स बहुत अच्छे हो। बाबा कहते हैं ना कि दूसरे को रिस्पेक्ट से बातचीत करो, तू तू मैं नहीं करो, तुम नहीं बोलना चाहिए, आप बोलना है। तो देखो बाबा ये भी मैनर्स हमें सिखाते कि देवी देवता जैसी चलन चलो, देवता मिसल खाना खाओ, देवताओं जैसी वाणी हो, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल में बन रहे हैं, हम प्रैक्टिकल में बन रहे, हमें महसूस करनी है। ज्ञानी तो आत्मा मीन्स उसमें रियलाइजेशन पावर होगा, हर बात को हम महसूस करें। कौन कब तक हमें पढ़ाएगा, हमें खुद खुद को पढ़ाना है, खुद खुद को समझाना है, खुद खुद को रिस्पेक्ट करना है। स्वमान का अर्थ ही है आत्मा का मान किस में है, आत्मा का मान किस में है, उनकी ओरिजिनल पवित्र स्थिति में। पतित बने तब से गिर गए, हमारा मान है अपनी ओरिजिनल अनादि शुद्ध सत्य पवित्र स्थिति में। इसलिए मुझे अपने आप को कभी भी नीचे गिराना नहीं है, रोज अपने आप से पक्का करो, कुछ भी हो जाए, कोई भी कारण बन जाए, हमें अपने आप को नीचा गिराना नहीं, हमें अपनी सत्य शुद्ध पवित्र शांत स्थिति में सदा रहे। जब आप ऊंची स्थिति में स्थित होंगे, अपने आप सबके साथ दिव्य मैनर से बात करें, अच्छा व्यवहार करेंगे। कई कहते हैं उसने ऐसा बोला ना इसलिए मैंने भी बोला, ऐसे ही कहते हैं ना कई बार, उसने दो बोला तो मैंने चार बोला। हमने अपना व्यवहार क्यों बिगाड़ा, हमारे व्यवहार का आधार दूसरे हैं क्या? कि दूसरे अच्छे बनेंगे तो बाबा मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, हमारी ऐसी बाबा से कमिटमेंट है क्या? हमारा तो बाबा से ये कमिटमेंट है ना कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे महान बनना है। कोई कैसे भी हो पर मैं तो महान हूं ना, मैं तो ज्ञानी तो आत्मा हूं ना, मुझे अपने तरफ से हर आत्मा को सुख देना है, अच्छे शब्दों से व्यवहार करना, ऐसे तो नहीं ना कि कोई गाली बोले तो आप भी बोलने लगेंगे, हाँ? क्या विचार है? नहीं ना, हमें तो अपना स्वमान है ना कि हमें तो अपने मुख से क्या निकालना है, ज्ञान रत्न, पत्थर नहीं निकालने। बाबा कहते हैं ना मुरली में, पर जब खुद को अटेंशन होगा तो नहीं निकलेंगे। कैसा भी व्यक्ति हो, व्यवहार हो, कैसा भी सिचुएशन हो, परंतु मैं महान हूं, बाबा ने मुझे महान बनाया है, इसलिए मुझे सबके साथ अच्छा व्यवहार। हर कोई चाहता है ना कि हर कोई मेरा रिस्पेक्ट करे, चाहते हैं ना सभी, हाँ? हर कोई हमें सहयोग दे। तो जब हमें सबसे सम्मान चाहिए तो सम्मान पाने की विधि क्या है? देना। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। इस संसार कर्म क्षेत्र का ये नियम है, जो आप देंगे वो ही आपको मिलेगा। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें सबसे सहयोग चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो ही मुझे देना है। बाबा ने हमें दाता बनाया, तो हरेक अपने आप को देखो। भट्टी में आए हो ना, किस लिए आए हैं? सभी स्वदर्शन करने आए, वहां तो आपको फुर्सत नहीं है, नौकरी धंधा घर कारोबार संभालना है, तो बाबा ने आप सबको यहां बुलाया कि यहां 3-4 दिन आकर आराम से रहो, सब सुविधाएं तैयार मिलेगी, आप स्वदर्शन कर, खुद को देखो, खुद को देखो। हम खुद खुद को मान दे सकते हैं कि निराशा के, हताशा के, डिप्रेशन के, फ्रस्ट्रेशन के विचार तो नहीं करते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मुझे ऐसा ही सब मिला है करके बाबा कहते ना, खुद ही खुद को कोसते रहते। अब खुद खुद को कोसेंगे तो अपने को ऊंचा कैसे उठाए? इसलिए बाबा कहते ना, खुद एश्योर करो, अपने आप को एश्योर करो, मैं बाबा की महान बच्ची हूं, पवित्र योगी आत्मा हूं, ज्ञानी तु आत्मा हूं, सर्व ईश्वरीय मर्यादाओं से युक्त हूं, मैं रूहानी सेवाधारी हूं। खुद खुद को याद कराओ, हम कौन है, किसके बच्चे हैं? अगर ये स्वमान रहेगा तो अपने आप समझ में आएगा मुझे क्या करना है। दादी क्या याद कराती थी, याद है सबको? दादी जानकी कौन सी तीन बातें याद कराती थी? हाँ, मैं कौन, हाँ ये है स्वमान की बात हुई ना भाई, मैं कौन, मेरा कौन है, सर्वशक्तिमान भगवान खुद मेरा है, अब और क्या चाहिए। हमने स्वीकारा नहीं, हर कर्म में याद नहीं करते हैं, इसलिए अनुभव नहीं होता है। भगवान ने तो अपने तरफ से वरदान दे दिया था। और ये दो स्वमान रहेंगे, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, तो आप कभी भी मुंझेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं, आपको क्लैरिटी बुद्धि में रहेगी, आप डिसीजन ले सकेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे में ही परख शक्ति और निर्णय शक्ति आएगी, हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी ही सद्बुद्धि निर्णय करेगी, ज्ञान समझ देता है, परख देता है। योग से बुद्धि शक्तिशाली बनती है, हम डिसीजन लेते हैं जो करना चाहिए वो ही करें, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करें, इसको योगी कहते। ये है योगी, जो करना चाहिए श्रीमत के अनुसार, सत्य ज्ञान के अनुसार, हमारी ओरिजिनल पवित्र स्थिति के अनुसार जो करना चाहिए वो ही करें, और जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करें, इसको कहेंगे सेल्फ कंट्रोलिंग पावर वाला राजयोग। तो देखो हर एक अपने आप को, हमारा रिजल्ट क्या है, हम कहां तक पहुंचे हैं, कितनी परसेंटेज में हम पहुंचे हैं, शांति से बैठकर हर एक अपने आप को देखो। प्यारे बाप दादा का पार्ट भी संपन्न हो गया, हमारी दादियां भी एडवांस में चली गई, अब अगर खुद को संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं तो खुद ही खुद को बनाओ। खुद खुद के पीछे मेहनत करो, ये जागने का समय है। आप कहेंगे हम तो जाग गए हैं ना, परंतु लंबा समय होता है तो फिर वापस सोने लगते हैं, तंत्रा में चले जाते, फिर थोड़ी बहुत हल्की नींद आने लगती, इसलिए ये समय है खुद जागो। बाबा ने हमें बहुत जगाया, दादियों ने भी जगाया, अब खुद खुद को जगाओ, अपने लक्ष्य को मजबूत करना है, मुझे बनना ही है। संगम युग ऐसे ही थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करके तो पूरा नहीं करना है ना। क्या लक्ष्य है सभी का? हाँ देखो नहीं बोलते हैं बहने, आपके भाई बहने नहीं बोल रहे हैं। हिंदी तो आती है ना, मैं बोल रही हूं वो समझ में आ रहा है ना। फिर हमारे मुख से उमंग से निकलना चाहिए ना कि हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही। आधा अधूरा पढ़ के संगम पूरा करना है क्या? वही ना, भगवान पढ़ाए और हम थर्ड क्लास सेकंड क्लास पढ़े। खुद खुद को समझाओ कि हमें फर्स्ट क्लास लाना है, पास विथ ऑनर बनना है। बाबा तो कितना हमारे में उमंग भरते हैं, अब खुद खुद में भरो। ये टाइम है खुद खुद को सुजाग करना है, तब बाबा से निराकार स्वरूप से मदद ले सकेंगे। बाबा ने साकार में मदद की, अव्यक्त आकारी रूप से हमें मदद की, अब समय कौन सा है निराकार स्वरूप से मदद लेनी। बाबा आते नहीं हैं पर बाबा है तो सही ना। हाँ इसलिए रोज बार बार बाबा से मिलना है, दिल की हर बात बाबा से करनी है और अपने लक्ष्य को हमें समय से पहले पूरा करना है। बाबा कहते हैं ना, विनाश के पहले आपको पूजनीय वंदनीय गायन योग्य बन जाना है। अभी बनेंगे तो सतयुग में देवता रूप से आएंगे ना, इसलिए खुद ऊंचे सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है और बाबा के सभी बच्चों को ज्ञानी अज्ञानी लौकिक अलौकिक परिवार वाले पड़ोस वाले नौकरी धंधा करते हैं वो सबको हमें रिस्पेक्ट देना है। पसंद है सबको तो दो हाथ ऊपर करो। हाँ बहुत अच्छा। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और सभी मन ही मन बाबा को बताओ कि बाबा आपने हमें स्वमान ऊंचा दिया, ऊंची नजर से देखा, शुभ भावना रखी, हमारे से इतना पुरुषार्थ करवाया, हम भी सभी आत्माओं को ऊंची नजर से देखेंगे, शुभ भावना सबके लिए रखेंगे।
कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ, जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।
आवश्यक ही सम्मानधारी और सम्मानधारी आपस का गहरा संबंध आपको समझ में आ गया होगा। दीदी जी ने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ आए और हम सबको लाभान्वित किया, तो दीदी जी का एक हाथ हिलाकर पुनः हम आभार शुक्रिया धन्यवाद करते हैं।